بسم الله الرحمن الرحيم. ठीक है भाई, किसका माइक और कैमरा ऑन है? प्लीज बंद कर दे, बहुत तकलीफ हो रही है। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، देखो आज की मजलिस है 19 इसका उन्वान है खास वजह इख्तियार करना तकब्बुर है। मैंने लिखा है खुसूसियत तकब्बुर है। तो देखो, एक इंसान किसी चीज में एक खास इख्तियार कर लेता है और फिर उसकी हुदूद से आगे निकल जाता है तो वो किब्र में दाखिल हो जाता है। अब हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज सुनिए, उससे बात पूरी समझ में आ जाएगी। वजादारी में गुलू भी किब्र है। वजादारी में, वजादारी यानी इंसान का पहनना, रहना, करना, तो उसमें एक खास चीज का इख्तियार करना, उसमें गुलू भी किब्र है। वजा क्या चीज है? वजा क्या चीज है? कता क्या चीज है? और आन क्या चीज है? एक वजा, कता, आन, ये सब होती है ना, सब तफसील आएगी आगे। तो ये सब शैतानी धंधे हैं, ये सब शैतानी धंधे हैं। क्या मतलब? अपने आप को इतना बड़ा ही क्यों समझे कि उसके लिए खास वजा मुकर्रर हो, खास वजा मुकर्रर हो। बंदा का हक तो यह है कि जिस वर्दी और जिस वजह में सरकार रखे उसी में रहे, यानी जिस लिबास में अल्लाह रखे उसमें रहे, अपनी राय और अपने इरादे को बिल्कुल फना कर दे कि नहीं, मुझे तो मेरा कुर्ता ऐसा हो, मेरा अमामा ऐसा हो, मेरा बुरका ऐसा हो, ये वजह नहीं है। जिससे जरूरत पूरी हो जाए बस, या करे लेकिन उसमें भी गुलू कर देना, वो है असल में किब्र। अब सुनो, बाज लोगों का मजाक होता है, यानी मिजाज होता है कि लोगों में अपना इम्तियाज जाहिर करने के लिए खास वजह बना लेते। हाँ, ये वो, और वजह भी ऐसी है कि उनकी सुबह में अलग, शाम में अलग, आज अलग, कल अलग। बहुत मैंने देखा है ऐसे लोगों, कभी कभी दोस्ती होती तो बोलता भी हूं, मैंने कहा ये क्या अलग अलग तुम करके आते हो, सीधा सीधा अपना एक लिबास हो, एक टोपी हो और उसको पहन कर सीधा आओ और वही हमारा हो, बदलने में हरज नहीं है, लेकिन कटिंग अलग हो और डिजाइन अलग हो। तो बोलता हूं कि भाई ये क्या चीज है, ये वजह करता है। तो इसे ये किब्र की अलामत है, ऐसे मैंने देखे। तो बाजों को इसके अंदर बहुत बसु होता है, बल्कि बाज मरतबा तो मैंने इतना गौर किया कि उनकी जोहर की नमाज में अलग है, असर में अलग है, मगरिब में अलग है, ईशा नमाज में मिलते हैं, तो मैं देखता रहता हूं। मैंने कहा ये क्या लगाया, ये कौन सी हदीस में है? हाँ, तो ये किब्र में दाखिल हो जाता है असल में। हालांकि हम समझते कि चलो अच्छा अच्छा पहन कर, नहीं, ये अंदर किब्र होता है। भाई एक लिबास तुमने सुबह में पहना है, ठीक है, अब तुम कल बदल दो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सुबह में सफेद रंग का कुर्ता है तो जोहर में फिर दूसरे रंग का कुर्ता है ना, फिर कभी अमाम अलग पहना, कुर्ता वही है। तो ये सारी चीजें बहुत वो होती है। मसलन एक शख्स अपना खास लिबास मुकरर कर लिया और अब जब मुलाकात करेंगे तो उसी लिबास में, जब बाहर निकलेंगे तो उसी लिबास में, और जहन में ही होता है कि इसके जरिए अपना एक इम्तियाज पैदा होता है, एक शान पैदा होती है और लोगों में ये शोहरत हो जाए कि आदमी हमेशा ये लिबास पहनता है, हमेशा ये लिबास पहनता है। तो देखो, बजाहिर तो अच्छा है, इसमें गुलू करना, गुलू गुलू अलग चीज है। देखो याद रखो, एक इंसान अपना अच्छा लिबास पहनकर बाहर जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिल की नीयत क्या है कि नहीं, अगर कोई दूसरा आ जाए बोले नहीं, फिर लोग क्या समझेंगे, तो फिर ये किब्र में आ गया। हजरत वाला फरमाते हैं ये भी किब्र का एक शोबा है। देखिए बगैर एहतिमाम के कोई खास लिबास आदमी पहनता रहे तो उसमें कुछ मुजायका नहीं। बगैर एहतिमाम के कोई खास लिबास आदमी पहनता रहे तो उसमें कुछ मुजायका नहीं, लेकिन ये एहतिमाम कि जब भी कपड़े पहनो तो ऐसा ही लिबास हो, दूसरा न हो। टोपी जब भी पहनो तो ऐसी हो, मेरा हुलिया हमेशा ऐसा ही हो। वजह के इस एहतिमाम का मंशा बसा औकात किब्र होता है, और ये मंशा होता है, ये इरादा होता है कि मैं औरों से मुमताज नजर आऊं, जरा अलग नजर आऊं। अरे भाई कहां का इम्तियाज, कहां की ये वजह और कता, होना ये चाहिए कि यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, बस ये है। तो अब इसमें बहुत बारीक फर्क होता है, याद रखना। ये हर शख्स समझ, हर शख्स समझता है कि भाई इस्लाम में सफाई पसंद है तो हम सफाई रखते हैं, तो ये ठीक है, लेकिन सफाई का उन्वान करके अंदर से किब्र पैदा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। हम साफ सुथरे रहते हैं। कौन सी सूरत में किब्र में दाखिल है ये देखो। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने किसी खास लिबास का एहतमाम नहीं फरमाया, बल्कि कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, ताकि किब्र में शामिल ना हो। मैं ये नहीं कहता कि किसी खास लिबास का एहतमाम करना हमेशा किब्र होता है, नहीं। इसलिए कि बाज औकात ये होता है कि आदमी को किसी खास एहतमाम के बगैर एक लिबास पहनने की आदत पड़ी हुई है और वो पहनता चला जा रहा है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो बोला ना, इसकी इस एक कैफियत दिल की कैफियत होती है, उसमें कोई हर्ज, लेकिन ऐसा करना कि उसके खिलाफ ही न हो, उसके खिलाफ होने को अपनी तौहीन समझे, तो ये सूरत किब्र के अंदर दाखिल हो जाती है। खुलासा ये है कि बेतकल्लुफ रहो। क्या है? बेतकल्लुफ रहो, किसी खास लिबास पहनने का तकल्लुफ न करो, बल्कि अगर बेतकल्लुफी में एक लिबास पहन रहे हो तो पहनते रहो, बेतकल्लुफी में दूसरा लिबास मिल गया तो वो पहन लिया, तो कोई मुजायका नहीं। लिहाजा एक लिबास का एहतमाम करना ये तकब्बुर में दाखिल हो जाता है। जी ये बताया ना, बहुत बारीक फर्क है, जो दिल के अंदर अगर इंसान गौर करे तो समझ में आ सकता है, और कभी कभी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता, धोखा खा जाता है। इसलिए ये तो शेख ही बताएगा कि भाई मेरी ये वजह और मेरा ये लिबास पहनना और मेरा इस तरीके से रहना, क्या ये तकब्बुर में दाखिल है या कैसा है, तो वो वही एहतमाम से बता सकते हैं और पॉइंट को निकाल सकते हैं। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया, हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह सादा लिबास पहनते, मगर वो लिबास कायदे का होता था और आप खूब खुश पोश थे, यानी अच्छा लिबास पहनते थे, सादा भी और अच्छा भी। आमतौर पर सफेद लिबास पहनते थे। हजरत वाला की बड़ी अहलिया हजरत से बहुत मोहब्बत करती थी। एक मरतबा रमजान मुबारक में उन्होंने हजरत वाला के लिए एक अचकन सिया, एक खास लिबास सिया, क्योंकि शौकीन थी, मोहब्बत भी करती थी और वो खुद सीती भी थी और लिबास की शौकीन थी, इसलिए उन्होंने अचकन के लिए बहुत शौक किस्म के कपड़े का इंतखाब किया, अच्छे से अच्छा लिबास कपड़ा लाई और खुद सिया, जिस पर फूल बूटे भी बने हुए थे, यानी जिसपे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। अब पूरे रमजान को खुद सीती रही और हजरत वाला को खबर भी न होने दी क्योंकि ईद का लिबास मैं तैयार करूं। वाह, बस ईद से जरा पहले उसको तैयार करके हजरत की खिदमत में पेश किया और कहा कि ये अचकन, अचकन यानी खास जो एम्ब्रॉयडरी वाला लिबास, तो अच्छा वो जो कुर्ते के ऊपर जो पहनते हैं ना, कौन सा, सदरी या जैकेट, जैकेट जो पहनते हैं ना ऊपर से, तो वो उसमें भी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, एक खास किस्म का बना है। तो फरमाया ये अचकन मैंने आपके लिए सिया है। हजरत वाला देखकर हैरान रह गए कि ये ऐसा शौक कपड़ा यानी कीमती, तो मैंने तो ऐसे चमक वाला कपड़ा तो मैंने आज तक कभी नहीं पहना। लेकिन हजरत वाला ने उन पर कुछ जाहिर नहीं किया, बल्कि उनकी तारीफ की कि तुमने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सिया है, बड़ी मेहनत से सिया है, अल्लाह ताला तुम्हें जजाए खैर दे। अहलिया ने कहा कि मैंने ये इसलिए सिया है कि आप उसको पहनकर ईदगाह जाए। अब बताओ हजरत, और ये इनको शौक हो गया है, आप ये पहनकर ईदगाह जाए। हजरत वाला ने फरमाया कि मैंने सोचा कि अब उसको पहनकर ईदगाह जाऊं तो मुश्किल और न पहनू तो मुश्किल। बीच में आ गए, ईदगाह जाओ तो मुश्किल पहनकर और न पहनू तो मुश्किल, अगर पहनकर जाऊं तो लोग बातें बनाएंगे कि मौलाना साहब को देखिए कैसा चमकदार लिबास पहनकर ईदगाह में आ गए, और अगर न पहनू तो उनका दिल टूटेगा, इसलिए कि उन्होंने सारा रमजान बड़ी मेहनत से उसको सिया है। आखिर में हजरत ने फैसला किया कि इनका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं, दिल तोड़ना मुनासिब नहीं, अगर मैं उसको पहनकर ईदगाह जाऊंगा और लोग बुरा समझेंगे तो समझते रहे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि लोग बातें करेंगे कि मौलाना साहब कैसा चमक वाला लिबास पहनकर आ गए। चलो कहने दो, देखो इसको कहते हैं, यानी कोई खास ऐसा नहीं कि इंसान दूसरे का दिल तोड़ दे और पहनकर न जावे। तो देखो उन्होंने अगर न पहन दे तो वो हो जाता था कि एक खास वजह इख्तियार कर ली, पहन लिया इनका दिल रखने के लिए। चुनांचे आप उसको पहनकर ईदगाह तशरीफ ले गए। जब ईद की नमाज से फारिग हुए तो एक साहब ने कहा, हजरत ये अचकन तो आप पर जेब नहीं देता। हजरत ने फरमाया, हाँ भाई तुम सही कहते हो, अच्छा ऐसा करो कि तुम ही इसको ले जाओ। चुनाचे उतार कर उसको दे दिया, उतार कर उसको दे दिया। देखा इनका दिल भी रह गया और पहन भी लिया, अपनी वजाकता भी खत्म कर दी कि पहन लिया। देखो कितना ये दीन है, इस दीन को हम भूल गए कि किसी का दिल न टूटे। अगरचे वहां शर्म तो आ रही है कि कभी पहनने की आदत नहीं है, और मेहनत से बनाया है, न पहनो तो भी परेशान। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े आदमी को अपनी तबीयत के खिलाफ लिबास पहनकर इतने बड़े मजमे में जाना पड़ जाए तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन आपने दिल शिकनी से बचने के लिए सब गवारा कर लिया। अगर कोई हम जैसा टिप टॉप वाला होता, वजाकता का पाबंद होता, वजाकता यानी टिप टॉप का पाबंद होता, तो अपनी अहलिया को ये जवाब देता कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाए, मैं तो ये पहनकर नहीं जाऊंगा, मैं लोगों के सामने जलील ख्वार हो जाऊंगा। लेकिन चूंकि आपने अपने नफ्स को अल्लाह के लिए मिटाया हुआ था और अपने आप को फना किया हुआ था और अब्दियत का पैकर बनाया हुआ था, बंदे थे ना, बंदगी थी, इसलिए उनके नजदीक आम कपड़ा पहनना और चमक वाला लिबास पहनना सब बराबर था। बहरहाल किसी भी खास वजह पर आदमी को न तो इतना एहतमाम हो न इसरार हो कि आदमी इस वजह का गुलाम बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तकब्बुर का इल्मी इलाज, तकब्बुर की बातें ही चल रही है अभी तक, लेकिन अलग अलग पॉइंट से समझा रहे हैं। अब तकब्बुर का इलाज, हजरत ने तकब्बुर का इल्मी इलाज बयान करते हुए फरमाया, इल्मी इलाज, तकब्बुर का अमली इलाज भी बता दिया, ये इल्मी इलाज। फरमाया कि तकब्बुर का इल्मी इलाज तो ये है कि अपने अयूब को सोचा करे, अपने अयूब को सोचा करे। जी और यूं समझे कि मुझे तो अपने अयूब का यकीन के साथ इल्म है, अयूब को सोचा करे और यूं समझे कि मुझे तो अपने ऐब का यकीन के साथ इल्म है और दूसरे के अयूब का जन के साथ इल्म है। یعنی میرے عیوب تو مجھے یقین ہی معلوم ہے نا، اور دوسرے کو عیوب یقین نہیں ہے، صرف گمان ہے، ہو سکتا ہے سچے ہو سکتا ہے جھوٹے ہو، تو گمان ہے تو یقین نہیں ہے، یقین والی سچی بات ہوتی، تو اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے، دوسرے کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے، اور جو شخص معیوب یقینی ہو وہ معیوب ظنی سے بدتر ہے، اور جس کا عیب یقینی ہو اور جس کا عیب یقینی نہ ہو تو یقینی عیب والا بدتر ہے نا اس سے، تو گویا خود بدتر ہو گیا دوسرے سے، اور جو شخص معیوب یقینی ہو معیوب ظنی سے بدتر ہے، اس لیے مجھے اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہیے، یہ علمی لائے، یہ علم سے سوچے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا علم جو ہے، اپنے عیوب جو ہے ہر ایک کو معلوم ہے، تو وہ تو یقین ہو گئے، ابھی آپ دوسروں کے عیوب میں نظر کرو تو وہ تو گمان کرتے ہو نا، یقینی تو نہیں ہے، آئے گا اس کا خلاصہ بھی، انسان کو اپنے عیوب کا تو 100% یقین کے ساتھ علم ہے، بھائی اپنے علم اپنے عیب کا تو 100%، بھائی مجھے پتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، یہ تو مجھے پتا ہے یقینی، لیکن سامنے والا گنہگار ہے وہ گمان ہے، یقین نہیں ہے، یقین گمان سمجھتے ہیں، گمان کا مطلب ہو سکتا ہے سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا ہو، یعنی میں سامنے والا گنہگار ہے لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں، ہم نے کچھ حرکت ایسی دیکھی بس، تو اس کو کہتے ہیں گمان والا ہے، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ عیوب کا تو 100% یقین کے ساتھ علم ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، دوسرے کے عیب کے بارے میں جو علم ہوگا وہ ظنی ہوگا، اگرچہ ظن غالب ہی صحیح، اب یہ دیکھیں کہ معیوب یقینی بدتر ہے یا معیوب ظنی، ظاہر ہے کہ معیوب یقینی بدتر ہے، یعنی جس عیب کا یقین ہو وہ برا ہے، اس لیے متکبر اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میرے اندر جو عیب ہے وہ یقینی ہے، لہذا میں اس سے بدتر ہوں، اس لیے مجھے اپنوں کو دوسروں سے کمتر سمجھنا چاہیے، یہ تو ہے علمی علاج، میں نے آسان کر کے سمجھایا، اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پھر سمجھنا، اس کو سن کر کہ سادہ الفاظ میں بتایا کہ ایک اپنا عیب ہے اور ایک دوسرے کا عیب ہے، دوسرے کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے لیکن ہم گمان کرتے کہ ہاں وہ برا ہے، لیکن میں برا ہوں یہ تو مجھے تو یقین ہے کہ میں کتنا برا ہوں، تو فرمایا یہ سوچے کہ میں تو برا ہوں، تو پھر میں اس لیے تکبر کے بارے میں یہ سوچے کہ میں معیوب ہوں اور میں عیب والا ہوں اور یقینی میں عیب والا ہوں، تو پھر ہمیں دوسروں پر نظر نہیں جائے گی اور ہمارے اندر کبر نہیں آئے گا، یہ کبر کا علاج بتا، یہ علمی علاج تھا، ابھی عملی علاج بتا رہے کہ علم یعنی سوچے، یہ سوچے، اب عملی علاج، اور عملی علاج یہ ہے کہ جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو، حضرت کے الفاظ ہے فرمایا جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آؤ، یعنی بعض مرتبہ انسان تکبر کرتا ہے تو دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو علمی علاج یعنی تھنکنگ، اور علم کا علاج یہ تھا کہ اس کے عیب تو ظنی ہے میرا عیب یقینی، اب عملی علاج یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہے چھوٹا سمجھتے ہو نا، تو فرمایا اس کے ساتھ تم تعظیم اور تکریم کر سے پیش آؤ، یعنی اس کی تم عزت کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے چھوٹوں پر شفقت کرو، ہے نا، تو پھر اگر تمہارے نزدیک وہ چھوٹا ہے تو عملی علاج بتایا تو تم اس کے ساتھ شفقت کرو، اس کا اکرام کرو، یہ عملی علاج جزو اعظم ہے، یہ بہت بڑا، اس کے بغیر تنہا علمی علاج کافی نہیں، تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ جب تک عملی علاج نہ کیا جائے گا تکبر دور نہ ہوگا، اب اس کی سب کی تفسیر آئے گی، قصوں کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ، اس لیے اس کو پہلے ذہن نشین رہے، اس کے بعد باتیں سب سمجھ میں آ جائے، آپ کے دل میں دوسرے شخص کی ناقدری ہے جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، لہذا اب کیا کرو عملی علاج میں، اب تم بتکلف اس کے ساتھ تعظیم اور تکریم کا معاملہ کرو، اس سے تکبر دور ہوگا۔ ایک صاحب کے خط کے جواب میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ تم مسافروں کے پیر دبایا کرو، مسافروں کے پیر دبایا کرو، اس سے تمہارا تکبر زائل ہوگا۔ دیکھا تکبر کا علاج بتا، مسافروں کے پیر دبایا کرو۔ اب بزرگوں کے قصوں سے ساری بات سمجھ، ہمارے بزرگوں کی ادائی بھی عجیب تھی، ان کے رنگ بھی مختلف تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت خوش پوشاک تھے، اچھا لباس پہنتے، صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے، بقول شخصے کے حضرت تو دلہا بنے رہتے تھے، حضرت تو دلہا بنے رہتے تھے۔ جبکہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ پر فنائیت کا رنگ غالب تھا۔ حضرت تھانوی کا رنگ دیکھو اور حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ پر فنائیت کا رنگ غالب تھا، فنائیت بالکل۔ وہ کپڑوں کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، کبھی دو پلی پہن لی، یعنی وہ ٹوپی تھی نا دو، ایک گول ٹوپی ہوتا ہے اور ایک دو سائڈ والی ہوتی ہے، بیچ میں سے سلائی ہوتی ہے، اس کو دو پلی کہتے ہیں۔ کبھی دو پلی ٹوپی پہن لی اور کبھی پاجامہ پہن لیا، کبھی لنگی پہن لیا، یہاں تک کہ کوئی آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ آپ شیخ الہند ہے۔ کبھی کیا پہلے، ان کے اندر فنائیت کی غلبہ تھا، حالانکہ وہ بھی بڑے تھے یہ بھی بڑے تھے۔ تو یہ ہوتا شیخ الہند کی توازو دیکھو، رمضان المبارک میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے یہاں ساری رات تراوی پڑھنے کا معمول تھا، ساری رات 20 رکعت تراوی میں ساری رات گزارتے تھے، 20 رکعت تراوی میں پوری رات گزارتے تھے، 10 پارے روزانہ پڑھے جاتے، 10 پارے، اور ہر تیسرے دن قرآن شریف ختم ہوتا تھا، 3 دن میں قرآن، مختلف حفاظ تراوی میں سنایا کرتے تھے۔ ان حفاظ میں ایک حافظ مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت والا کو ان کی تلاوت بہت پسند تھی، اس لیے اکثر ان کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، انہی سے زیادہ سنتے تھے۔ اب بتاؤ اتنے بڑے اللہ والے اور پوری رات تراوی میں قرآن سنتے تھے۔ ایک دن مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے انہوں نے معذرت کر دی کہ آج میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تراوی نہیں پڑھا سکوں گا۔ مولانا فخر الدین صاحب کی اس روز تراوی مختصر ہوئی، اور تراوی کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نفلیں پڑھنی شروع کر دی۔ مولانا فخر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ ایک حجرا تھا، میں اس میں جا کر لیٹ گیا، ان کی طبیعت، تراوی پڑھانے والے حافظ صاحب، وہ بولے میں بیمار تھا تو میں مسجد میں جا کر سو گیا ایک کمرے میں، رات کو میں نے اچانک محسوس کیا کہ کوئی میری ٹانگیں دبا رہا ہے، میں نے سوچا کہ شاید کسی طالب علم کو خیال آ گیا ہوگا کہ یہ بیمار ہے، چلو ان کی ٹانگیں دبا کر ان کی کچھ خدمت کر لے، اور مجھے ٹانگیں دبانے اچھا لگا، اس لیے میں چپ چاپ لیٹا رہا اور مڑ کر نہیں دیکھا کہ کون دبا رہا ہے۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو میں نے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا کہ پاؤں دبانے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے۔ دیکھا استاد ہے شاگردوں کے پیر دبا رہے ہیں، کیا فنائیت غلبہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں فنائیت، نفس فنا ہو کر چکا تھا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے، ان کو دیکھ کر میرے اوپر تو بجلی سی گری، میں نے کہا حضرت یہ کیا، فرمایا اس میں کیا حرج ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے سوچا کہ ذرا ٹانگیں دبا دوں، اس سے تمہیں آرام آ جائے گا۔ حالانکہ مولانا فخر الدین صاحب حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، یہ دارالعلوم دیوبند ویسے ہی مشہور نہیں ہو گیا، جی دارالعلوم دیوبند ویسے ہی مشہور نہیں ہو گیا، اور یہ اکابر دیوبند ویسے ہی اکابر دیوبند نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے صحابہ کے زمانے کی یادیں تازہ کی ہے، وہاں قربانی دی گئی ہے، الحمدللہ آج بھی وہاں پر ایسے علماء ہیں جو بالکل صحابہ کی یادوں کو تازہ کر دیتے ہیں۔ وہ تقوی کی بنیاد پر ساری دنیا میں مشہور ہے، اور آج اس پر نظر ہے، اس کی تقوی کی بنیاد پر نظر ہے، ورنہ وہ دنیا میں فتنوں کو مٹانے کے لیے ہے، اور کہتے یہیں سے فتنہ شروع کرتے ہیں، فتنہ نہیں ہے، فتنے کو مٹانے کی جگہ ہے۔ सारी दुनिया में अमनो अमान पैदा करने वाला है। फरमाया साहबा की जमाने की याद ताज़े, आज लोग मसलक के देवबंद का मतलब ही नहीं समझते कि मसलक के देवबंद क्या है। कहते ना हम देवबंदी है, तो देवबंदी लोग कहते हैं तो लोगों के दिलों के अंदर बहुत होते हैं, बोले देवबंद ओ ये तो हकारत आ जाती है। नहीं, लोग समझे ही नहीं है कि देवबंद है क्या और वहां कैसे कैसे अकाबिर, या काबिर देवबंद है, उनका तकवा देखो, उनका ईमान देखो, उनकी आजीजी देखो, उनके अंदर सुन्नतें देखो। तो मसलक मसलक मसलकन कौन है? देवबंदी है। क्योंकि आज मसलक बहुत बदल गए, कोई बरेलवी हो गया, कोई अहले हदीस हो गया, कोई सलफी हो गया, कोई ये हो गया, तो कोई मसलक के देवबंद। तो इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सुन्नत पर मसलक के देवबंद वाले अभी तक भी मौजूद हैं। वो कल बात आई थी ना कि इनका काम, हजरत ने फरमा हमारा काम, हम चौकीदार है, हम किसी को इस्लाम में दाखिल करते भी नहीं है, किसी को निकालते भी नहीं है कि किसी पर फतवा लगा दिया कि काफिर हो गया। बोले नहीं, हमारा काम तो, हम तो चौकीदार है। ये मसलक के देवबंद चौकीदार है कि इस्लाम के अंदर कोई भी नई चीज कोई दाखिल करेगा हम उसको निकाल देंगे। बोले नहीं, और अगर इस्लाम में से कोई चीज घटाएगा हम उसको भी निकाल देंगे। तो ये है कि बरेलवियत ने चीजों को बढ़ा दिया, घटा दिया, और सलफियत ने चीजों को बढ़ा दिया, तो दोनों रास्ते से हट गए और उलमाए देवबंद सिराते मुस्तकीम पर है। आगे सुनो, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह और उनकी तवाजु देखो। ये तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तवाजु कि उन्होंने कोई वजाकता, इसी उसी को समझाना चाहते हैं जो हम समझ रहे थे कि जो समझ में वो बात नहीं है। तो उन्होंने देखा कि अपने आप को बड़ा समझ कर नहीं कि मैं छोटे का कैसे पैर दबाऊ, नहीं वो बेचारे बीमार है, लाओ उनका पैर दबा। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह अरवाह सलासा में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हमारे सैयदुत ताइफा हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों से इलाज के खातिर उनसे कहते, अपने शागिर्दों से इलाज के लिए उनसे कहते कि जूते उठाओ, लेकिन जब किसी तालिब इल्म को देखते कि वो मुतवाजे है, यानी बाज तलबा को तो इलाज के लिए कहते जूते उठाओ, और बाज तलबा जो तवाजु वाले होते थे तो वो मुतवाजे है, उनसे उसके अंदर तकब्बुर नहीं है, तो उस तालिब इल्म के जूते खुद उठा लेते थे। देखा, कोई वजह नहीं है कि मैं तो सबको खाली हुक्म दू, मैं कैसे करूं, क्या समझेंगे लोग। नहीं, ये लोग क्या समझे, अंदर से ताल्लुक सही हो जाता है तो हमारे जिल्लत वाले काम करने से जिल्लत नहीं आती, जिल्लत वाले काम करने से भी हिदायत फैलती है। याद रखना, हिदायत फैलती है कि वो भी एक अमल है नबी का, कि वो कैसे आ सकती है, जब तक वो ऐसा नहीं करेगी उससे भी हिदायत फैलेगी। जब ताल्लुक मालना हो जाता है उसके बाद जिल्लत वाले कामों से जिल्लत नहीं आती, हिदायत फैलती है। इज्जत वाले कामों से भी हिदायत मिलती है, जिल्लत वाले कामों से भी हिदायत फैलती है। अल्लाह अकबर। और जब तक अंदर का ताल्लुक नहीं बना होता है तब तक हम उसी वसवसे में होते हैं, लोग क्या समझेंगे, हमारी तो फिर वजाकता में फर्क पड़ जाएगा। ये जब ये उस वक्त तक समझते जब अंदर से ताल्लुक नहीं बना है। याद रखो, जब ताल्लुक बन जाएगा तो फिर कोई परवाह नहीं होगी, कोई क्या भी समझे, मुझे तो करना है। एक मरतबा सबक पढ़ा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई तो तलबा अपनी अपनी किताबें उठाकर अंदर जाने लगे, तो हजरत वाला तलबा के जूते समेट कर अंदर ले गए। बेनफसी और तवाजु में उन हजरत ने सहाबे किराम रदियल्लाहु अन्हुम की यादें ताजा कर दी थी और अपने आप को मिटाया हुआ था। हमारे दिमागों में किब्र का, इल्म का, दौलत का, सेहत का, सिफतों में, औसाफ में कमाल का जो खन्नास भरा हुआ है, उसने सारा मामला खराब कर दिया है। हमारे दिमागों में किब्र का, इल्म का, माल का, तंदुरुस्ती का, और इसी तरीके से सारे जो कमाल का खन्नास भरा हुआ है, उसने सारा मामला खराब कर दिया है। अल्लाह ताला अपने फजल से ये खन्नास हमारे अंदर से निकाल दे। आमीन आमीन, आफियत के साथ निकाल। ये खन्नास बहुत खतरनाक है। इसलिए अपने आप को अल्लाह का ताल्लुक हासिल करे। और इस तरह ये दीन है, देखो ये भी दीन है। और ये बड़ा अजीब, इस दीन पर इख्तियार करने में हमारी तबीयत नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? इसमें नफ्स मरता है। जब दीन ही पर चलना है ना, तो ये भी तो दीन है, इसको भी तो इख्तियार करे। जहां नमाज पढ़ना दीन है, वहां तवाज़ु इख्तियार करना भी दीन है, जूते सीधा करना भी दीन है, तो ये भी दीन है। इसलिए हमें दीन में हर किस्म का दीन इख्तियार करना होगा। चंद किस्म के दीन पर चलेंगे और चंद को छोड़ देंगे तो दीन अधूरा होगा। अधूरे दीन पर अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। आज हमारे अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम नहीं, आज हम टूट चुके हैं। हमारे अंदर तोड़ पैदा हो रहा है हर जगह पर। भाई भाई में तोड़ है, मियां बीवी में तोड़ है, काम करने वालों में तोड़ है, मस्जिद की कमेटी में तोड़ है, और इधर उधर सब के अंदर तोड़ है। तो आज हमारे अंदर जो इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम नहीं होता, तोड़ है। जबकि हर शख्स ये कोशिश करता है कि कैसे जुड़ जाए, लेकिन इत्तेहाद होकर नहीं देता। हर शख्स जुड़ने की कोशिश करता है लेकिन जुड़ते नहीं। अगर इत्तेहाद हो भी जाए यानी जुड़ भी जाता है, तो चंद दिनों के बाद ही फिर वो टूट जाता है और सारा इत्तेहाद पारा पारा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है कि हालांकि दीन का काम कर रहे हैं तो दीन के काम से तो जुड़ना चाहिए, फिर दीन का काम कर रहे हो फिर टूट रहे हैं, तो ये कैसा? तो ये सवाल है कि आज हम टूट गए। ये टूटने की वजह क्या है? उसके बारे में हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इत्तेहाद कायम होने की दो शर्तें हैं। जोड़ को कायम करना हो तो दो शर्तें हैं। जब तक ये दोनों शर्तें नहीं पाई जाएगी, उस वक्त तक जोड़ कायम नहीं हो सकता। जोड़ कायम नहीं हो सकता। कहा एक इखलास और दूसरा तवाज़ु। एक इखलास दूसरा तवाज़ु का ये दो चीज अगर होगी तो कभी भी तोड़ नहीं होगा। याद रखना, कभी तोड़ नहीं हो सकता। वो दोस्ती मौत तक निभेगी अगर इखलास और तवाज़ु होगी। दो टूटती कब है? अगराज आ जाती। याद रखो, गरज पूरी नहीं होती तो टूट जाती है, या गरज पूरी हो गई तो टूट जाती है दोस्ती। बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो दोस्ती रखते रखते रहते अचानक टूट गए। क्या हुआ कि उनकी गरज थी पूरी हो गई। क्या था कि भाई उनको कुछ सीखना था, वो सीख लिया, पूरे हो गए। तो गोया दोस्ती इखलास वाली नहीं थी, सीखने की थी, सीख कर चले गए, ये गरज थी। या किसी का कुछ काम था, वो काम हो गया, दुआ करानी थी, ये करानी थी, वो करानी थी, चले गए, टूट गए। भाई इखलास, अल्लाह के बंदे है, इल्म वाले है। हदीस में आते, इल्म वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। जब इस नियत से मोहब्बत करोगे तो मौत तक कभी नहीं टूटेगी। तो इखलास वाली जो दोस्ती है वो मौत तक टूटती है, और जब दोस्ती टूट जाए तो समझ लो इखलास नहीं था। चाहे बरसों साथ में रहे और अब अलग हो गए, अब कोई पूछता भी नहीं है, तो ये इखलास की कमी है। एक इंसान नमाजी था, नमाजी छोड़ दिया, क्यों? इखलास की कमी। अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा था, अपने मतलब के लिए पढ़ रहा था, हालात खराब हुए तो नमाज में आ रहा था, हालात बन गए तो छोड़ दिया। तो इखलास बहुत अजीब चीज है। तो ये दूसरी तवाज़ु, क्यों? कि जो झुकेगा वहां तोड़ होता ही नहीं। तोड़ तो दोनों में अकड़ हो तो तोड़ होगा, दोनों में से अगर एक भी झुक जाएगा तो सीधा जोड़ हो जाएगा। इसलिए कि वो किसके सामने अकड़ेगा? ये तो झुक गया है तो वो भी सामने से चुप हो जाएगा, और दोनों अकड़ रहे हैं तो दो मुर्गे की लड़ाई हो जाएगी। कहीं भी मुर्गे पाले तो दो मुर्गे होते हैं ना, दोनों अकड़ते हैं। वो कहता है तू इधर मेरे मोहल्ले में क्यों आया, वो कहता है तू क्यों आया। अब दोनों आपस में झगड़ रहे, उसमें से एक झुक जावे तो सीधी उनकी लड़ाई बंद हो जाती। तो एक को झुकना ही पड़ता है। तो इसीलिए फरमाया तवाजू, और जाहिर बात है इखलास होगा तो वो झुकने में शर्म महसूस नहीं करेगा, इखलास होगा तो झुकने में शर्म महसूस नहीं करे, और झुकने वाला हमेशा मुखलिस होगा। हाँ, झुकने वाला कभी किसी की ताकत को देखकर झुक जाता है, तो वो फिर अगराज आ गई, तो वो यानी ये तो हमेशा के लिए जो जो तोड़ और जो जोड़ होगा ना हमेशा के लिए, तो जो सही मानों में जो तवाज़ु और इखलास होगा तो ही वो हमेशा जुड़ेगा, लोग उससे जुड़ेंगे और वो हर एक से जुड़ सकेगा। लिहाजा दो मुतकब्बिरों में कभी इत्तिहाद नहीं हो सकता, दो मुतकब्बिरों में कभी भी जोड़ नहीं हो सकता, अगर इत्तिहाद होगा तो वो वक्त ही होगा, और अगर के दो मुतकब्बिर जुड़ भी गए तो अपने किसी गरज के लिए, चल भाई निस्फ तू ले ले, आधा तू ले आधा मेरा, चल हम झगड़ेंगे ना तो सब पूरा जाएगा, तो क्या करते हैं दोनों जुड़ जाते हैं, जैसे आजकल जुड़ गए ना सब, अरे सब इशारा काफी है, तो जब जुड़ जाते हैं तो कहते आधा तूल आधा मेले चुप हो जा, तो वो जुड़ गए, लेकिन वो जुड़ना वक्ती है और जाती मफाद के लिए होगा, जब वो मफादात पूरे हो जाएंगे बस फिर इत्तिहाद खत्म, जब अपना मिल गया है कि चलो अपनों को आधा मिल गया, फिर वापस तोड़ होगा शुरू। अल्लाह अकबर। तो याद रखे बहुत पते की बात, फरमाया कभी भी किसी को जोड़ना है इत्तिहाद कायम होने के लिए दो शर्तें जरूरी है, दो शर्तें जरूरी, क्या क्या है, एक इखलास दूसरा तवाज़ु, और आज मार्केट में ये चीज मिल नहीं रही है, इसलिए देखो मियां बीवी के अंदर भी झगड़ा होगा तो यही दो चीजें, अगर जोड़ है तो उसमें से मुखलिस जो होंगे वो छोड़ देंगे, बोले छोड़ो, वो उसकी कड़वी कसेली सुन लेंगे एक दूसरे की, कहा छोड़ दो, और झुकना है। अब मर्द कहता है कि मैं कैसे झुकूं, मुझे अल्लाह ने कवि बनाया है, हाँ ये औरत को झुकना चाहे तो गए काम से फिर। वो वहां नहीं देखना है कि इसको कवि बनाया उसको कमजोर बनाया मैं कैसे झुकूं, तो फिर शैतान वाली बात हो गई कि उस इबलिस को कहा तो सजदा कर, तो बोले इसको तो मिट्टी से बनाया और मुझे तो आग से बनाया है। फरमाया नहीं, कवि का मतलब यह है कि कवि झुकता है, और वो कमजोर का मतलब कि कमजोर अकड़ता है, वो कमजोर है, याद रखो कवि हमेशा झुकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवि थे ना, आप झुकते थे, तो इसलिए मियां बीवी के दरमियान में झगड़ा भी इसी तरीके से होता है कि झुकना नहीं और इखलास नहीं, दोनों की दोस्ती जो है वो अगराज पर होती है, नहीं अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह की नेमत समझना चाहिए, और एक दूसरे के अंदर गलतियां तो होती है उसको बर्दाश्त करना, उसकी इसलाह करना, इसको समझा बुझाकर आपस में जोड़ के साथ में रहे तो हमारा घर जन्नत बनेगा जी, वरना खाली अगराज पूरी हो गई और रह रहे हैं और कोई मोहब्बत नहीं तो फिर क्या दुनिया में मजा ही क्या है। तो इसलिए तवाज़ु हो और दूसरा इखलास हो। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दो मुतकब्बिरों के दरमियान जो जाती मफादात के लिए जोड़ कायम होता है, दो मुतकब्बिरों के दरमियान अपनी जाती मफाद के लिए फायदे के लिए जोड़ कायम होता है, उसकी मिसाल गधा खुजावर जैसी है, कैसी है, गधा खुजावर जैसी। अब जब गधे की कमर में खारिश होती है, खुजली आती है, तो खुद से तो अपना जिस्म खुजा नहीं सकता, इसलिए वो दूसरे गधे से कहता है कि तेरी कमर में भी खुजाल हो रही है और मेरी कमर में भी खुजाल यानी खुजली हो रही है, इसलिए तू मेरे करीब आ जा, फिर हम दोनों आपस में मिलकर कमर से कमर रगड़ते हैं, उसको गधा खुजावर कहते हैं। गधे को खुजली आती है, अब बेचारा वो कहां से पैर से खुजलेगा, दूसरे गधे के साथ के चल तेरे को भी आ रही होगी, हम दोनों मिलकर, तो ऐसे है दो मुतकब्बिर जब आपस में जुड़ते हैं ना तो ऐसा ही होता है, उसको भी अपना मतलब होता है, उसको भी अपना मतलब होता है, बोले चल आधा आधा ले लेते हम। तो वो दोनों गधे मिल गए तो इसकी खुजाट खत्म हो गई, अपना काम, जब खुजली खत्म हो गई तो भाग जाएगा, इसको गधा खुजा हो गया। इसी तरह दो मुतकब्बिरों के दरमियान जोड़ भी दर हकीकत गदा खुजावर है, गधे की खुजली की तरह है, इसलिए कि अपनी जाति और वक्ती मफाद के खातिर जोड़ कर लेते हैं और जब अपना मफाद पूरा हो जाता है तो एक दूसरे को लात मारकर अलग हो जाते हैं। जब अपना फायदा पूरा हो गया तो अलग हो गए। तो आज कल की दोस्ती मतलब के लिए लोग आते हैं, मतलब पूरा हो जाए चले जाते हैं, अल्लाह के लिए दोस्ती करने वाले लोग बहुत कम हो गए। अल्लाह के लिए दोस्ती करो, अल्लाह के लिए दर्स में आओ। दर्स में क्या भाई, चलो इल्म की जरूरत है, अब नया नया इल्म मिल रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के लिए आओ कि अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए, अपने अंदर से बिगाड़ निकल जाए, अपनों को रूहानी सेहत मिल जाए, ईमान बन जाए। इसके लिए तालीम में बैठना है, इसके लिए दर्स में आना है, ये सबक में आना है। सबक में इसलिए नहीं आना है कि नई नई मालूमात मिल रही है, चलो ये इल्म तो हमने कभी सिखा ही नहीं था, अब यहां से सुना और दूसरों को जाकर सुना रहे, इसके लिए नहीं। ये इल्म ऐसा है किसी को सुनाएंगे तो समझा नहीं सकेंगे, ये इल्म अपने अंदर उतारो तो खुद दूसरों को दूसरे समझ जाएंगे। तो जब अपना मफाद पूरा हो जाता है तो एक दूसरे को लात मारकर अलग हो जाता है, और हकीकी इत्तेहाद, हकीकी जोड़, इखलास और तवाजु के बगैर कायम हो ही नहीं सकता। किसने बताया था ये? महाजन हाजी इमदादुल्ला महाजन मक्की रहमतुल्लाह, जो तमाम शेख के शेख है, उसको सैयदुत ताइफा कहते हैं, पूरे लोग जमात के सरदार, सूफियों की जमात के। तो उन्होंने बड़ी पते की बात में, इखलास और तवाजु के बगैर कायम हो ही नहीं सकता, सारे झगड़ों की बुनियाद भी यही तकब्बुर है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फजल से हम सबको उससे नजात अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुराकबा कर ले।